ओम शांति। बाप समान बनने वाली दिव्य शिक्षाएं पढ़ते हैं हम, उसमें अमृत वेले की पॉइंट है। उसमें तीन पॉइंट चार पॉइंट दिया गया चौथ, उसमें सबसे पहले है अमृत वेले बाप दादा बच्चों की माला सिमरण करने शुरू करते हैं। हर रतन की व मणिकी की विशेषता देखते हैं। उस समय आप स्वयं को भी चेक कर सकते हो, याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में स्वयं को देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर से मुझे सुमिरन कर रहे हैं। उसके लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। तो अमृत वेले बाप दादा बच्चों की माला की सुमिरन करते हैं, तो उसमें हम होंगे कि नहीं होंगे, हमारा नंबर होगा कि नहीं होगा। तो बाबा ने हमें एक आईना दिया है, ज्ञान रूपी आईना, उसमें हम चेक तो कर सकते हैं कि हमारा नंबर कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इतना ज्ञान के आधार से तो हम देख ही सकते हैं। बाबा कहता है कि भक्ति मार्ग में हमने बहुत आधा कल्प माला सुमिरन किया है, तो बाबा ने ऊपर से इतना आधा कल्प हमने बाबा को याद किया, उसकी गुणों की माला सुमिरन की है, तो बाबा भी रिटर्न देने के लिए आया है। तो रिटर्न देने के लिए क्या चाहिए? बाबा कहता है कि मैं भी बच्चों की माला सुमिरन करता हूँ, लेकिन बच्चों की माला सुमिरन करता है तो विशेषता देखता है। कौन सी विशेषता देखता है? बाबा सबसे पहले हम जब ज्ञान में चलते हैं तो हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि इतने घर में से कोई चले ना चले, समाज में कितना विरोध होता है। इस सब को छोड़ करके हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो सबसे कोई भी ब्राह्मण आत्मा ऐसी नहीं हो जिसको सामना नहीं करना पड़ा हो, चाहे समाज का, चाहे घर का, चाहे किसी भी व्यक्ति का। तो बाबा सबसे पहले हमारा हिम्मत देखता है, उसके बाद हम धीरे धीरे चलते हैं तो कितना त्याग करते हैं, क्योंकि पहले तो घर का सुनते हैं, घर के माता पिता का बहुत मानते रहते हैं, उसकी हर आज्ञा पर चलते हैं। लेकिन जैसा हमारा ये ज्ञान मार्ग शुरू होता है तब हमारी ऑपोजिशन बहुत होती है, तो त्याग, और बाबा त्याग देखता है। फिर बाबा कहता है कि विशेषताएं, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण आत्मा ऐसा नहीं, बाबा ने हमारी ऐसी कौन सी विशेषता देखी हो और हमको अपना बना लिया, तो विशेषताएं देखते हैं। फिर क्या देखते हैं? गुण देखते हैं। और फिर जब बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो हमारा चार्ट देखते हैं कि कितना हम याद में रहते हैं। फिर बाबा क्या देखते हैं कि हम उनको याद करते हैं, तो ऐसे नहीं भगवान और भक्त के रिश्ते में नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कि रिश्ता है हमारा, बाप और बच्ची का रिश्ता, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब संबंधों से हम बाबा को याद करते हैं, कितने संबंधों से याद करते हैं, लेकिन उस सब में बाबा ने कहा कि आप अपना नंबर देख सकते हो टीवी में, रूहानी टीवी में। तो रूहानी टीवी में कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए क्या चाहिए? रूहानी टीवी चाहिए। बाबा ने कहा था एक बार कि आपका यहाँ तो क्या टीवी है, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े टीवी है, जो वहां से मैं देखता हूँ तो वहां से बाबा छोटी छोटी चीज को बहुत बड़ी देखता है। तो बाबा के पास तो बहुत टीवी है, तो हमको भी उन्होंने टीवी दे दिया है, रूहानी टीवी। तो उसमें क्लियर बुद्धि चाहिए, क्लीन बुद्धि चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना है, उसको भी बाबा चेक करता है कि जैसे जैसे बच्चा चलने लगता है, तो आपने देखा हो कोई बच्चा होता है ना, वो बाप के चप्पल पहनते, बड़े बड़े चप्पल पहनते हैं उनको होता है कि मैं भी वैसा बन जाऊं, उसका बाप का कोट पहनते हैं, नहीं आता है लेकिन फिर भी वो पहनते हैं, तो उसको अंदर से होता है कि मैं भी बाप समान बन जाऊं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि बाप समान क्या देखना है, कि उसका संकल्प क्या है, उसका बोल क्या है, उसका संस्कार क्या है। तो हम उसके समान बन रहे हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा को एक माला, खास माला एक दिखाई देती है कि उस माला में बच्चों को पिरोए जा रहे हैं, वो माला में बाबा को एक विशेष गुण याद आता है, वो है संतुष्टता का गुण। तो बाबा कहते हैं कि मैं इस ब्राह्मण आत्मा से चुन रहा हूँ पिरोने के लिए। उसने खास संतुष्टता की बात कही है कि जो संतुष्टता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहता है और हमारे से और भी जो आने वाले संबंध संपर्क में वो भी संतुष्टता की अनुभूति करते हैं। तो वो अनुभूति कैसे करते हैं? हम कहते हैं हम तो संतुष्ट है, हमारे सामने कोई संतुष्ट है कि नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन हम तो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि संतुष्टता की अनुभूति के दृष्टि से मालूम पड़ जाए कि हमारे संतुष्ट है। जो बहुत किसी से संतुष्ट रहता है उसकी उसका चेहरा देखो, कभी कोई कंप्लेन नहीं है उसकी किसी के साथ। तो दृष्टि ऐसी होती है, वृत्ति ऐसी होती है। तो बाबा संतुष्ट मणि आत्माओं की माला सुमिरन कर रहे हैं उसमें पिरोने के लिए। तो लेकिन बाबा ने कहा कि जब एक दो के संपर्क में आते हैं तब तो संतुष्ट है, लेकिन बाबा ने एक बार कहा था कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा ने 5% छुट्टी दिया था, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे होते अपने अपने स्वभाव संस्कार के कारण वो असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन 95% तो संगठन में जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तभी मालूम पड़ता है कि हम किसी को कितना संतुष्ट करते हैं। 95 पहले होती है, उसके बाद धीरे 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 लास्ट में 5% छुट्टी देता है। तो 100% से शुरू करता है जब बाबा के बच्चे बनते हैं, फिर धीरे धीरे परसेंटेज हमारा संतुष्टता का बढ़ना चाहिए, फिर 5% फिर भी छुट्टी दिया है। फिर बाबा ने कहा कि अपनी याद की शक्ति से कैसे हमें टीवी में देखना है। तो याद हम करते हैं, हम सभी को पता है, ड्रिल करते हैं बिंदु रूप की स्थिति को, फिर संबंधों की शक्ति उसी समय आपको पता है हम सभी को कितने संबंधों की अनुभूति करने के लिए बोला था, बहुत सारे संबंध याद रहेगा नहीं रहेगा ना। लेकिन बाबा का आपने देखा होगा जो मुरली में स्पेशल एक संबंध आता है, कभी बाबा कहते हैं मैं धोबी हूँ, कभी कहता है मैं सुनार हूँ, तो उसी रीति से भी हम बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाप दादा के साथ कितनी हम एकाग्र है बुद्धि हमारी, दूसरा सारे दिन में बाप के साथ संबंधों की अनुभूति हम कितनी करते हैं, क्योंकि कभी कभी सारे दिन में कई संबंधों की अनुभूति करनी पड़ती है। मुझे एक थोड़ा सा याद आता है, एक माता थी ना, तो बहुत ही परेशान होती थी जब किचन में जाती थी, तो बूढ़ी माता थी, कहती थी बाबा मैं रोटी बनाती हूँ, तुम सीखने के लिए आ जाओ, मैं कपड़े धुलाई करती हूँ ना, कपड़े को साबुन लगाती हूँ, धुलाई करने के लिए आ जाओ। तो जो जो से हमें सेंटर पर ही माता आती थी और वो ऐसे कहती थी कि देखो बाबा कितनी मदद करता है, तो ऐसे बहुत खुश रहती थी। तो बाबा का प्यार ऐसा मिलता है, जो बाबा आज भी बाबा ने बोला कि प्यार में खो जाते हैं तो कोई भी प्रकार का दुख भूल जाते हैं। तो निभाने के ऊपर है, और निभाने के लिए क्या चाहिए? कोई व्यक्ति कहे मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन उसकी एक भी बात माने नहीं, तो वह हमेशा कहे कि पापा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी आपको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मम्मी कहे तुम ही बाजार में से ला करके दे, बोला नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि आप सिर्फ याद में रह जाओ और बाबा को याद करते रहो, लेकिन बाबा की कोई आज्ञा को मानो नहीं तो उसका सबूत नहीं है। तो सबूत नहीं है तो बाबा कहते हैं कि ऐसे प्यार को बाबा नहीं मानता है, भले आंख में आंसू भी बह जाए लेकिन बाबा की आज्ञा नहीं मानो। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी बात है ना दिल की बातें, दिमाग की बातें है ही नहीं यहाँ। दिमाग की बातें जब बुद्धि में लाते हैं तो बाबा कहते दिल की याद दिलाराम तक पहुंचती है, और दिमाग की बात दिमागी लोगों के पास पहुंचती है। तो बाबा ने कहा कि याद रखना बहुत जरूरी है, याद ही नहीं होगा तो स्मृति ही नहीं होगी तो कैसे याद करोगे, तो वो भी तो जरूरी है। फिर बुद्धि की लाइन क्लियर में आप क्या समझते हो कि बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, उसमें आप क्या समझते हो? बुद्धि की लाइन किस प्रकार से क्लियर होनी चाहिए? कनेक्शन कैसा होना चाहिए? कनेक्शन अटूट होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। नहीं, बाबा ने बोला बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी तो आप रूहानी टीवी में देख सकते हो। जोर से बोलो। और विचार नहीं चाहिए और संकल्प नहीं चाहिए, एक ही बाबा की लगन का वेस्ट और नेगेटिव नहीं हो, शुद्ध संकल्प से बुद्धि भरपूर हो, दूसरा कि सभी के प्रति हमारी कैसी भावना हो, सुभावना हो, कैसा भी बाबा ने एक बार बोला था काला कोयला भी हो लेकिन आप उनके प्रति भी सुभावना रखो तो संबंध संपर्क में आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हमारे संबंध में सब सतो प्रधान लोग ही आएंगे, तो हर व्यक्ति हमारे संबंध संपर्क में आएंगे तो हमें क्या करना है? बाबा ने बोला कि शुद्ध शुभ भावना रखनी। दूसरा जो पॉइंट है 15वीं जो पॉइंट है उसमें अमृत वेले विशेष बाप दादा उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मतवान बच्चों को याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उस समय अपने को शक्ति लेने के पात्र समझकर बैठो तो बहुत अच्छी अच्छी अनुभव कर सकते हो। तो अमृत वेले विशेष बाप दादा उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मतवान बच्चों को याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उस समय अपने को पात्र समझो शक्ति लेने के, चात्रक बन के बैठो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो सकते हैं। तो उमंग उत्साह की जब बात आती है तो मुझे दादी याद आती है। बच्चों का क्लास कराती है या कॉन्फ्रेंस में क्लास कराती है या कहीं भी कराती है, ऐसा उमंग उत्साह भर देती है। नए नए लोगों को कहते हैं कि भोजन की परहेज करना है, इतना उमंग उत्साह दिलाती थी दादी। और हमने ये भी देखा क्लास में जब भी कभी बहुत बारिश का समय आता था तो दादी कहती थी देखो हलवा गरम गरम हलवा लाओ, तो मतलब कि वो जो है ना जो किचन में बैठे बैठे कहते हो सुनते ही होंगे, फटाफट फटाफट मतलब बना के लाते थे। और दादी का कहना एक बार और लोग है ना ऐसे उमंग में आ जाते थे। और दादी का एक हमने देखा है कि वो जब किचन में राउंड मारती थी ना तो राउंड में राउंड मारना ही उसका सबको उमंग उत्साह भर देना होता था। दादी जी हर एक डिपार्टमेंट में एक बार चक्कर लगाती नहीं लेकिन वहां देखती तो जरूर थी कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और हमने वो भी देखा कि जब आंगन में बैठती थी ना तो हर एक इंसान हर एक बाबा का बच्चा था उसको दादी इम्पोर्टेंट देती थी। ऐसा नहीं कि जो बहुत वीआईपी है भोजन बनाने वाले होते थे सफाई करने वाले होते थे उसको बहुत इम्पोर्टेंट देती थी। और जब भी ये बारिश की सीजन पूरी हो जाती थी तो एक भाई था पोछी करने वाला, बाबा के दादी उसको बुलाती थी इधर आओ बैठो, दादी उसको पास में बिठा के बोलती थी कि तुम इस मकान को सफेद साड़ी नहीं पहनाओगे क्या? तो मतलब कि इतना उमंग उत्साह भर देती थी ना वो तुरंत तैयार हो जाते थे। तो एक स्वमान होता स्वमान है कि मैं उमंग उत्साह में रहने वाली उमंग उत्साह में उड़ने वाली और उड़ाने वाली आत्मा हूँ। तो अमृत वेले सदा इस स्लोगन है उसको याद रखना है, उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को उड़ाना है। इसका मतलब कि उमंग उत्साह के दो पंख है, कौन सी दो पंख है? पंख मजबूत होती है तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। उमंग उत्साह दो पंख है और उड़ने की है। और बाबा ने एक बार बोला था कि टांगे हैं, कौन सी टांगे है? हिम्मत की टांगे हैं, है ना? बाबा ने कहा कि इसको टांग नहीं है टांग दो, बाबा ने एक बार बताया था। पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं, अगर पंख कमजोर होंगे तो कभी कोई चिड़िया होती है उसको कुछ लग जाता है उड़ नहीं सकती है तो उसकी मंजिल पर जल्दी पहुंच नहीं सकती है। तो पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं, अगर कमजोर होंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं जल्दी से। फिर मजबूत कब होंगे? उमंग उत्साह के पंख मजबूत कब होंगे? जब कोई जिम्मेवारी देते हैं, जब कोई जिम्मेवारी देते हैं तो बाप उसके साथ शक्ति भी देते हैं। हमने देखा है कि मकान जो बनाने वाला भाई होते हैं हमेशा दुनिया में, तो लेकिन यहाँ सेंटर पर हमने देखा है 20-22 साल की बहनें होती है, और जब मकान बनाना होता है तो आप देखो किस प्रकार से प्लानिंग करती है, किस प्रकार से बना देती है। तो जिम्मेवारी, यहाँ भी कोई जिम्मेवारी देते हैं ना तो कितनी मेहनत करना लग जाते हैं। तो भाई कहता था कल मुझे कि देखो मैंने तो ये सब है ना गुजराती मीडियम में ही पढ़ा है, और देखो आज मेरे को इंग्लिश मीडियम दिया। तो मैंने बोला लेकिन पढ़ाया ना आपने इंग्लिश मीडियम में, इसलिए मैंने कभी ऐसा वो पढ़ाना अलग बात है और ये पढ़ाना अलग बात है। तो कहने का मतलब जिम्मेवारी दिया तो बराबर होमवर्क करके लाया, नहीं तो छूट जाते थे हमेशा। तो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी, जब कोई जिम्मेवारी होती है तो उमंग उत्साह आ ही जाता है, क्योंकि बाबा ने हमें बच्चा बनाया, ब्राह्मण बच्चा बनाया। तो ब्राह्मण बच्चा ऐसे नहीं बनाया है मुफ्त में, बाबा ने ब्राह्मण बच्चा बनाया है। तो बाबा ने बोला जिम्मेवार बनना है। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग और उत्साह, अगर वही नहीं है तो जैसे लोगों को डिप्रेशन आता है तो कुछ भी नहीं रहता है। तो बाबा के ब्राह्मण बने हैं लेकिन उमंग उत्साह ही नहीं है तो कैसा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि आपकी जिम्मेवारी है, क्या जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी क्या है हमारी,
उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को
उड़ना और उड़ाना। तो जिसको उमंग उत्साह होता है उसकी निशानी क्या होती है, उसको क्या होता है उमंग उत्साह, किसको बहुत आ गया तो खुशी मिलती है, और दूसरा क्या होता है उसको थकान नहीं लगती, कितना भी काम बता दो उसको थकान नहीं होती है। और दूसरा कि उमंग उत्साह जैसे जैसे कम हो जाएगा ना वैसे बहाना बताएंगे और काम करने के लिए मना कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह होता है तो वो किस प्रकार से उमंग उत्साह मालूम पड़ता है कि इसमें उमंग उत्साह है, उसका चेहरे से मालूम पड़ता है, चेहरा बहुत प्रफुल्लित होता है, अच्छा होता है, और उसके चलन से। बाबा कहते हैं बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसका चलन भी ऐसा होता है, चेहरा भी ऐसा होता है कि उसके उसको देख करके ही लगता है कि वो इंस्पायर करते हैं लोगों को कि भाई हम इस जैसा बन जाए, हम भी मतलब कि उन जैसा काम करने लग जाए। तो उमंग उत्साह वो सबको चेहरे से और चलन से लिलाते रहते हैं, सबको नहीं कहते इधर आओ ये करो नहीं कहते, लेकिन उनके बोलना उनका चलना ऐसा होता है कि हमको भी लगता है कि हम भी उन जैसे काम करने लग जाए। फिर बाबा ने कहा कि मैंने आपको भुजा बनाई है, तो भुजा का काम क्या है, एक भुजा हमको दिया है, हमको हमारी भुजा काम ही ना करे तो बैठे रहे। तो बाबा की हम भुजाएं हैं, सर्वशक्तिमान की भुजाएं हैं, तो सर्वशक्तिमान की भुजाएं हैं तो इसकी जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी बनती है। जैसे कोई घर में बाप होते हैं और उसका बड़ा बच्चा होता है तो उनके कंधे पर पूरी जिम्मेवारी होती है। तो बाप कहते हैं आप कौन हो, सब मेरे जिम्मेवार बच्चे हो, सारी दुनिया को परिवर्तन करने का काम स्व परिवर्तन के साथ साथ दुनिया को परिवर्तन करना है, उसकी जिम्मेवारी किसको दी है, हम बच्चों को दी है। अगर जिम्मेवारी भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है, जिम्मेवारी भूल जाएंगे तो उमंग उत्साह भी कम हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए स्वमान का अभ्यास, स्वमान याद आ जाए हमको कि मैं उड़ने वाली और उड़ाने वाली हूँ, उमंग उत्साह में रहने वाली हूँ। तो अमृत वेले बाबा कहते हैं कि अगर आप ऐसे पात्र बन जाएंगे तो क्या होगा, अमृत वेले विशेष मस्त सर्वशक्तिमान की शक्ति मिल जाएगी। और अब कभी कभी हम अमृत वेले बैठते हैं तो कुछ याद ही नहीं रहता है तो इस पात्र भी नहीं बनते, इधर बुद्धि जाती उधर बुद्धि जाती, कभी 5 ड्रिल करे, कभी लगता स्वदर्शन चक्र फिराए, कभी परमधाम में जाए, नहीं। लेकिन अगर हम पहले से थोड़ा प्लान बना करके बैठते हैं कि ऐसा ही काम करना है तो हमारी बुद्धि स्थिर रहती है उसमें। फिर दूसरी पॉइंट है उसमें है कि भाग्य विधाता बाप आज्ञाकारी बच्चों को रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं। कल भी बहन जी ने परसों भी बहन जी ने बताया बहुत प्रकार के तिलक है लेकिन सफलता के तिलक में सब तिलक आ जाता है। सफलता माना ऐसे नहीं सुबह से रात तक जो भी काम करते हैं, जो भी बाबा के बच्चे काम करते हैं उस सब काम में सफलता, तो सफलता का तिलक सभी तिलक उसमें आ जाते हैं। रोज अमृत वेले सफलता का तिलक लगाते हैं, बाप रोज चक्कर लगाते हैं। अगर बच्चे सोए हुए हैं तो बाप जगाते हैं क्या? सोने देते हैं वो बाप। बाप कहते हैं आगे चले जाते हैं तो उनकी गफलत है। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगह कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, और ये लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। तो ज्योति जगह कर स्वच्छता से बैठो तो बाप आएंगे। जितना बच्ची याद करते हैं बाप उनकी याद का पदम गुणा रिटर्न देते हैं। रोज अमृत वेले रिटर्न देने के लिए ही चक्कर लगाते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वह है अपने पुरुषार्थ पर उस समय कैच करना। उसके लिए हमको एक बात याद आई कि बाबा को बच्चों से कितना प्यार है, बहुत प्यार है, क्योंकि कहते हैं कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता, कभी कभी मैं बेचैन हो जाता हूँ, ऐसा कहता है बाबा। मूल्य में कहता है ना, बच्चों के एक ही बार में उसका मुखड़ा देने के लिए देखने के लिए आता हूँ, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कैसा लगता है बाबा प्यार की बातें करता है। बाप को कितना प्यार है अपने बच्चों से। बाप की सच्ची याद का पदम गुणा रिटर्न देने के लिए चक्कर लगाते। कोई ऐसा होगा जो चक्कर लगाते रहे किसी को रिटर्न देने के लिए, उसके पास जाना पड़ता है। बाबा तो अमृत वाले बच्चों के पास आते हैं। बाबा कहते हैं जैसे दीपावली आती है तो घर की सफाई करते हैं, कोने कोने से कचरा निकालते हैं, सफाई करते हैं, और दीपक जगाते हैं, और लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी का आह्वान हो जाए, भरपूर हो जाए, धन मिल जाए। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी का आह्वान नहीं है, लेकिन लक्ष्मी को जी जिसने रचा है, लक्ष्मी के भी रचयिता बाप आपके पास चक्कर लगाते हैं। अगर वो याद आ जाए सुबह सुबह में कि हम बैठे हैं, वो चक्कर लगाने आएंगे। आपको पता है कभी कभी है ना, दादी चक्कर लगाती थी या किसी को बेचती थी तो चक्कर लगाती थी, तो कभी कभी क्लास में दादी लोग कहती थी कि जाओ आज कमरे में देख के आओ कौन सोता है, ऐसा तो मालूम पड़ता था ना, सब उठ करके एकदम अलर्ट हो जाते थे। अब ये तो स्थूल बात है, लेकिन बाबा चक्कर लगाते अगर वो याद आ जाए कि बाबा चक्कर लगाते और हमारी अगर नींद हो जाएगी, तो अगर वो याद आ जाता है तो भी क्या होता है, अलर्ट हो जाते हैं ना। लेकिन सुबह में वो याद आना कितनी बड़ी बात है। अगर वो याद आ जाए,
एक भाई ढूंढने वो उसको उठाने जाता था अमृत वेले, बड़ा भाई छोटे भाई को
तो बाबा ने, बाप तो ढूंढता नहीं है यहाँ, तो बाबा तो कहता है बच्चा अगर ऐसा करता है तो गफलत उसकी है, उसको ही कमी हो जाएगी।
वो हमेशा तो आप देखो हमेशा दिन में
उमंग उत्साह में लिखता है। तो उमंग उत्साह में तो दुनिया में कई वह होते हैं जो रहते हैं, लेकिन उमंग उत्साह में तो दुनिया वाले भी रहते हैं, कई प्रकार के लोग हैं जो सारे दिन देखो उमंग उत्साह में रहते हैं। तो इसका मतलब तो ऐसा नहीं। अगर बाप को क्या चाहिए, बाप को क्या चाहिए, कैसा बच्चा चाहिए, आज्ञाकारी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में आधा कल्प आपने परिक्रमा लगाई है तो मुझे रिटर्न तो देना पड़ता है। लेकिन बाबा चक्कर लगाते बच्चों के आसपास। एक बार है ना बाबा ने यहाँ कहा था कि ये जो चार धाम की यात्रा करते परिक्रमा लगाते, बाबा ने कहा मैं भी आपके साथ साथ होता हूँ, तो कैसा लगता है कि हम परिक्रमा लगाते वो भी हमारे साथ साथ पीछे पीछे है, अगर वो हम याद करते हैं तो कैसा लगता है, वो अच्छा लगता है ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में आधा कल परिक्रमा लगाई तो बाबा भी पदम गुणा रिटर्न देने के लिए आया है। तो कैसे बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे बैठना है, नहीं अभी हमने थोड़ा सुना है, छात्रक होके बैठना, और कैसे बैठना है, पात्र बन के। प्रकाश भाई कैसे बैठना है, आत्मा रूपी ज्योति जगा कर स्वच्छता से बैठना है। तो शुद्ध संकल्प, स्वच्छता भी हो, शुद्ध संकल्प भी हो, बाप का आह्वान करो। बाप का आह्वान करेगा तो क्या होगा, किसी का आह्वान करते कोई आए ना है, लेकिन बाप का आह्वान करोगे तो बाप जरूर आएगा। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी आज्ञा तो मिली है। ऐसे बहुत आज्ञाएं मिली हमको, अगर यज्ञ का लिस्ट बनाए तो बहुत हो जाए, लेकिन वो सारी आज्ञाएं हम एक दिन में नहीं कर सकते। लेकिन मुरली में जो आज्ञा आती है, रोज की मुरली में कोई कोई एक आज्ञा तो आती ही है, उसको हम फॉलो करें। बाबा ने बोला देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है, बहुत बार बोला है कि देहाभिमान नहीं, और तो देही अभिमानी बनने की बहुत बड़ी बात है। इसमें नहीं आता है ना, अभी अपना पाठ में नहीं आता है, सिलेबस में नहीं, सिलेबस से बाहर हम थोड़ा कम जाते हैं। तो बाप आएगा, अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी आज्ञा मिली है। तो अमृत वेले क्या करना है, वो बाबा ने बोला कि बाबा के साथ जब बैठते हैं तो बाबा को आह्वान भी करते, कुछ भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते परम धाम में मेरे साथ आकर के बैठ जाओ, बीज रूप बन के बैठ जाओ। तो बाबा के साथ जब आत्मा रूपी बिंदी बन करके बैठते हैं, है ना, तो क्या होता है, बाबा कहते कभी कभी, है ना, तो सुबह में वो मीठी मीठी नींद से जगते हैं और खटिया में से जब नीचे उतरते हैं तो मधुवन में तो हम रहते, हमको तो जास्ती मेहनत नहीं करनी पड़ती है, है ना, और हमको तो और भी जास्ती मेहनत नहीं करती, हिस्ट्री हॉल से एकदम कमरे से नीचे आ जाते हैं, लेकिन जो दूर दूर से आते हैं, ये तो हॉस्पिटल वाले का धन्यवाद है। तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मेहनत उसको है लेकिन लगन इतनी है, क्योंकि जगदीश भाई की बात सुने, इनके अमृत वेले कितने बजे, 2 बजे उठ करके साइकिल पे बैठ करके जाते थे अमृत वेला करने के लिए, तो लगन की बात है। तो आज्ञा मिली है कि अमृत वेले बाप के साथ बैठना है, लेकिन क्या होता है, ना नेमिनाथ नहीं बोला है, अनन्य बच्चे भी नहीं बोला है। आज बाबा ने बोला कि परमधाम में आ जाते और परमधाम से भी ऊपर एक लोग है, लोक है, कौन सा है, निद्रा लोक, उसमें चले जाते हैं। तो आज्ञा तो मिली है कि परमधाम में बाप के साथ बैठना है, लेकिन हम उस आज्ञा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते चेकिंग करना है कि आपको क्या आज्ञा मिली है और आप क्या करते हो। तो वही अगर मालूम नहीं है कि चलो बैठे तो बैठे नींद आ जाती है, कभी बहुत थके हुए होते हैं, सारे दिन बहुत काम किया है लोगों, कभी हमने मधुबन में देखा है कई डिपार्टमेंट इतना हैवी है, सारे दिन मतलब उनको नींद नहीं आती, मतलब नींद करने का टाइम ही नहीं है, और तो कंपैरिजन मतलब कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अलर्ट बन के तो उतने टाइम बैठना है। तो वो मतलब कि देखना है कि हम बाबा के साथ बिंदी बन करके बैठे हैं कि फिर ऊपर चले गए हैं। कभी कभी है ना, यहाँ मुझे याद है कि कभी कभी यहाँ समस्याएं कभी कभी आती थी या कुछ होता था, तो दादी जी कहती थी आप हर मास में, है ना, एक संडे ऐसा होता था जिसमें पूरी रात जागना है। तो कई लोग है ना इतने उमंग उत्साह होते थे ना, तो सारी रात सुबह रात को 10 बजे से होता था, 10 बजे से सुबह में 4 बजे तक बैठते थे। लेकिन कई है ना, तो पूरी रात तो कोई भी नहीं बैठ सकता, लेकिन थोड़ा जुट के आते थे, उठते थे, बैठते थे। तो हम बहुत सारा घंटा जो बैठते थे ना, एक बहन को हमने पूछा कि आप सारी रात बैठते हो, कभी भी ये दादी का प्रोग्राम देते हैं तो आप सारी रात बैठते हो, और सुबह में दादी पूछेगी सारी रात कौन बैठते हैं तो हाथ उठाएंगे। तो हमने पूछा कि सारी रात बैठ, बोला तो नींद नहीं आती, बोला आती है जाती है आती जाती, लेकिन फिर भी कुछ तो जमा होता है ना, कुछ तो जमा होता है, इतने घंटे में बैठेंगे, नींद आई तो आ गई, फिर जाग जाते हैं, फिर आती है। तो कहने का मतलब कि इतने घंटे, लेकिन वो हमेशा मैंने देखा जितनी भी बार ये प्रोग्राम किया उतनी बार वो बैठते थे। कैसे, कई 5-7 लोग ऐसे थे जो हमेशा पूरी रात बैठते थे।
आप उधर संडी पे बैठ के योग कराते हो, सामने कोई सो रहा है, आपको दिख रहा है, तो आपका संकल्प नहीं चलता उस समय?
संकल्प क्या, मैं तो एक संकल्प करती हूँ, क्या संकल्प करती हूँ कि मैं तो उन लोगों को देखती नहीं आता, तो नहीं मैं है ना, तो पहाड़ी पर बहुत सारे लोग बैठे उसको देखती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता ये नींद करते हैं क्या करते हैं, नहीं होता ऐसा। ऐसे तो बाबा ने हमको जिम्मेवारी तो दी नहीं है, हाँ हॉल वाले को देने का क्या है, देते हैं लेकिन फिर भी मतलब बुद्धि में ही रहता है। बाबा ने बोला था कि लास्ट में आप एक पहाड़ी पर होंगे और बहुत सारे लोग आपके सामने होंगे। हाँ बाबा ने बोला रिहर्सल करो, तो हम रिहर्सल कर रहे हैं। ऐसे तो आज्ञा को प्रत्येक स्वरूप में लाना है। बाबा कहते हैं कि रोज की मुरली में जो आज्ञा आती है उसका पालन किया तो बहुत ही सफलता का तिलक मिल जाएगा। और आज्ञाकारी बनने से बाप की दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलती है। बच्चों की गफलत क्या है कि बाप चक्कर लगाते हैं, बच्चे को मालूम ही नहीं रहता है, तो वो कैच नहीं कर सकते। अमृत वेले ब्रह्मा बाप हर एक एक बच्चे की कमजोरी को जानते हुए उसकी कमजोरी को भरने लग जाते हैं। और जो महारथी बच्चे हैं उन्हें बेहद की सीट पर सेट करते हैं, उनमें ये बल भरते हैं कि विश्व सेवा के उमंग उत्साह में सदा रहे। तो अमृत वेले बाबा का एक काम है। क्या काम है? हर बच्चे के प्रति बाबा ने, बाबा कहता है मेरा हर बच्चा कैसा है, जो भी मेरे बच्चे हैं अमृत वेले मुझे याद करता है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। जैसे माँ बाप होते हैं बच्चों को लायक बनाने का काम करते हैं, तो बच्चों को लायक कैसे बनाते हैं? बच्चों के प्रति बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, अगर प्यार भी देते हैं तो थोड़ा दंड भी देते हैं, नहीं जाता स्कूल में तो छोड़ने जाते हैं, बच्चा कितना रोता रहता है फिर भी छोड़ने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं एक एक बच्चों को देखता हूँ कि इसमें क्या क्या कमजोरी है, उसको उस समय कमजोरी खत्म करने का काम करता हूँ, तो कमजोरी भरने में मैं लगता हूँ। दूसरा है कि बाबा कहते हैं कि महारथी बच्चे माना ऐसा नहीं कि जो बहुत समय से चलते हैं उनको बाबा नहीं कहता है, लेकिन बाबा की आज्ञा को जो मानते हैं, बाबा की आज्ञा को मतलब कि बहुत अच्छी रीति से अपने जीवन में लाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो महारथी बच्चे हैं उन्हें बेहद की सीट पर सेट करते हैं। बेहद की सीट कौन सी है? बेहद की सीट बाबा कहते हैं कि मैं बेहद का बाप हूँ, मेरी सीट कौन सी है? सबको विश्व कल्याण करने की है ना, सबको सकाश देने की है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है। तो बाबा कहता है कि जो महारथी बच्चे हैं उसको मैं बेहद की सीट पर बिठा देता कि सब मेरा काम है, क्योंकि मैं तो आज भी बाबा ने कहा मैं तो नहीं जा सकता हूँ, हर जगह पे नहीं जा सकता हूँ, तो साकार में आप लोगों को जाना है, तो साकार में भी कहीं कहीं जाना होता है, किसका कल्याण करना होता है, तो बाप महारथी बच्चों को भेजते हैं। और बाबा ने कहा कि मेरी जो सीट है कौन सी है? सकाश देने की सीट भी है। बाबा कहते कोई तो मुझे पहचानते नहीं पहचानते हैं, है ना, दुनिया में जो लोग होते हैं नहीं पहचानते। बाबा कहते आपके द्वारा मैं काम करवाता हूँ, सकाश देने का काम करवाता हूँ, लोगों को बहुत ही तैयार करता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि बल भरने का काम बाबा बच्चों के द्वारा करता है। तो विश्व सेवा, कौन सी विश्व सेवा है हमारी? सबको परिवर्तन करने की सेवा। लेकिन बाबा के जब तक स्व परिवर्तन नहीं होगा तब तक विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें स्व पर अटेंशन देना है, और उसके बाद बाबा कहते हैं कि मैं उमंग उत्साह भी भर देता हूँ, तो उमंग उत्साह भरने का काम भी बाबा करता है। तो हम जब बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं तो बाबा हमारा उमंग उत्साह भरता है। मुरली में भी ऐसे ऐसे महावाक्य बताते हैं जिससे हमारा उमंग उत्साह भर जाता है। ओम शांति।